समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर जुरे नहीं जुरे गांठ पड़ जाए, रही माँ जुरे गांठ पड़ जाए। अब रहीमन
धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। सुरेश वाडकर की आवाज में आप सुन रहे हैं रहीम का दोहा। रहीम कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है और इसे अचानक तोड़ना सही नहीं होता, और प्रेम का धागा एक बार टूट जाए तो फिर इसे जोड़ना कठिन होता है, और अगर जुड़ भी जाए तो धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है और रिश्ते ठीक उसी तरीके से होते हैं। तो आज के दिन जन्म हुआ था रहीम का, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे अपने कार्यक्रम के। और मेरे साथ आज है मेरी सहयोगी रेणु कटारिया और मैं हूँ आपके साथ फरहत नास। तो नमस्कार हम दोनों का आप सभी को।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम फरहत, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। और जैसे कि फरहत ने बताया कि हम अपना न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर आए हैं, जिसमें वी आर गोइंग टू शेयर द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 17th ऑफ दिसंबर। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट फरहत।
जी रेनु, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया की यात्रा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में वहां के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने व्यापार और निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने और इसे और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। भारत और इथियोपिया के संबंधों को मजबूत करने और एक वैश्विक राजनेता के रूप में श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के लिए उन्हें यह सम्मान इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली ने दिया। श्री मोदी अफ्रीकी देश इथियोपिया की दो दिन की यात्रा पर।
Prime Minister Narendra Modi will arrive in Oman today evening on the last leg of his three-nation tour after concluding his visit to Jordan and Ethiopia. Mr. Modi is visiting Oman at the invitation of the head of state of the Sultanate of Oman, Sultan Haitham bin Tariq. Prime Minister Modi will be accompanied by a high-level delegation. India and Oman are likely to sign comprehensive economic partnership agreement during Mr. Modi's two-day visit. India and Oman share a close cultural bond rooted in millennia-old people-to-people exchanges and the presence of a substantial Indian community in Oman. Or, Farhad, the Indian Embassy in association with the National Archives of India, NAI, had conducted a first-of-its-kind special digitization and oral history project titled the Oman Collection, Archival Heritage of the Indian Community in Oman last year. Under this project, digitization of over 7,000 historical records of 32 old Indian diaspora families living in Oman for more than 250 years was done. These documents included personal diaries, account books, trade invoices, passports, letters, etc. These documents, dating from 1838 to early 20th century, were in English, Arabic, Gujarati and Hindi. As the Prime Minister is arriving on a two-day visit to Oman starting from today evening, our correspondent covering his visit has filed this report explaining how strong people-to-people ties are here between Indian and Omani communities.
One of the families from Kutch of Gujarat that has settled here for the last about 100 years has carved out a special respect for themselves and the Indian community as well. Shri Vijay Sinha Velji Pavani, an 80 years old who was born and brought up here, said that both Indians and Omanis are living here like family and have a lot of respect for each other.
Yahan Oman ke andar khas taur pe Muscat aur interior aur sab jagah pe hum logo ke jitne bhi any कम्युनिटी ऑफ इंडियन हैं उन लोगों का बहुत ही रिस्पेक्ट किया जाता है और हम लोगों के लिए ज्यादातर सेफ्टी वाला ये मुल्क है और हम लोग सब मिलके साथ में रहते हैं और हम लोगों के एक दूसरों को कोऑपरेशन के वजह से हम लोग सब साथ में बहुत खुशी से जी रहे हैं.
मिस्टर नौ नासिर अलाबरी, अ लोकल रेजिडेंट, सेड दैट दे लुक अप टू द इंडियंस एज ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टफुल सिटीजंस ऑफ ओमान.
फ्रॉम लॉन्ग टाइम आई सी many of Indians, they are around or surrounded our villages or and cities. They are started studying from long time, from thousands of years. We saw from them is very respectful and honest of business and trading. And also we growing up and they grow also surrounded us with the many of respect.
Bhagwan Singh, a businessman who's living here for the last over 50 years, also serves the community in Gurdwara Guru Nanak Darbar at Ghala in Muscat as well, says people here are very loving and all are living harmoniously. Under the leadership of Sultan of Oman, Indians always look ahead for Oman's growth.
All the communities are coming to Gurdwara Sahib and serving. We have a relationship with each other. So with the Omani community as well, we never felt we are estranged here. They are so good with us always. Omani people, they are the most loving people. The country is most beautiful country. It's one of the best tourist place here in the Middle East.
The pleasant relations between Indians and Omanis are the strongest link between the growth story of both the friendly nations who are moving together to touch new horizons. For Aaj Swaray, this is Rajesh Bali from Oman.
President Draupadi Murmu will visit Vellore in Tamil Nadu today. She will perform Darshan and Aarti at Shripuram Golden Temple. The President will inaugurate a meditation pavilion and plant a tree at the temple complex.
वहीं रेनू पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा. विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया है. इस वर्ष का विषय है विज्ञान तथा स्वास्थ्य और आरोग्य के बीच संतुलन बहाल करना. आयुष मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से आयुष प्रदर्शनी भी आयोजित करेगा.
Delhi government has taken strong measures to tackle the issue of air pollution in the national capital. Addressing a press conference, Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa said that vehicles without proper pollution under control or PUC certificate will not be provided fuel at petrol pumps from tomorrow. The minister further announced that there will be complete ban on trucks bringing construction material in Delhi. Moreover, private vehicles from outside Delhi with less than BS6 category will not be allowed to enter the national capital from tomorrow. And moving on to the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen or VBG Ramji Bill 2025 introduced in the Lok Sabha has proposed a statutory guarantee of 125 days of wage employment annually for rural families. The bill was introduced by Union Minister for Rural Development and Agriculture and Farmers Welfare, Shivraj Singh Chauhan, yesterday. Presenting the bill, he said the government remains committed to the welfare of the poor and the holistic development of villages in line with Mahatma Gandhi's vision of self-reliant and developed rural communities. Mr. Chauhan said the centre has committed to spending over 95,000 crore rupees on the proposed initiative.
और रेनू इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपेंद्र.
इस विधेयक का मकसद विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप गांवों का समग्र विकास करना है. गांव में हुए सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए केंद्र सरकार विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 लेकर आई है. नए विधेयक का उद्देश्य श्रमिकों को अधिक कार्य दिवसों की गारंटी, बेहतर मजदूरी और सुरक्षा प्रदान करना है. मनरेगा के तहत फिलहाल एक वित्त वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है. वही नए विधेयक में हर साल 125 दिन का रोजगार मिलेगा. इस विधेयक का उद्देश्य चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के माध्यम से रोजगार और टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण करना है। इनमें जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी अवसंरचना और मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए विशेष कार्य शामिल है। इस नए विधेयक के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और ग्रामीणों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
Farhad, the bill uses a structured thematic prioritization of public work so that each day of guaranteed employment creates productive and durable rural assets. All works identified through the Viksit Gram Panchayat plans are integrated into the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack, creating a unified and forward-looking rural infrastructure framework fully aligned with the Viksit Bharat vision.
जी बिल्कुल रेनू, और विधेयक में ग्राम पंचायत स्तर पर निधियों, विभागों और कार्यक्रमों से सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की भी अपेक्षा की जाती है, जिसमें योजना का उद्देश्य सभी पात्र परिवारों को शामिल करना और एकमुश्त कार्यों का समर्थन करने के बजाय महत्वपूर्ण कमियों को व्यवस्थित रूप से दूर करना होगा।
द बिल एस्टैब्लिशेस अ मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड गवर्नेंस आर्किटेक्चर टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड हाई इंटेग्रिटी सर्विस डिलीवरी. In a rural India marked by deeper digital penetration, improved connectivity and expanded public infrastructure, governance systems will be strengthened through digital public infrastructure, real-time monitoring and enhanced transparency mechanisms. The framework provides for biometric authentication, mobile-based monitoring, spatial technology-enabled planning, real-time dashboards, AI-enabled analytics and citizen engagement platforms. और फरहत बताएं कि हाउ दिस एक्ट, द न्यू एक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम मनरेगा एंड व्हाट मेक्स इट बेटर फॉर आवर लिसनर्स इज द न्यू एक्ट रिप्रेजेंट्स अ मेजर अपग्रेड ओवर मनरेगा, फिक्सिंग स्ट्रक्चरल वीकनेसेस व्हाइल एनहांसिंग एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपेरेंसी प्लानिंग एंड अकाउंटेबिलिटी. एंड द की इम्प्रूवमेंट्स इंक्लूड हायर एम्प्लॉयमेंट गारंटी. द गारंटी इंक्रीजेस फ्रॉम 100 टू 125 डेज, गिविंग रूरल हाउसहोल्ड्स हायर इनकम सिक्योरिटी.
वहीं रेनू, नया अधिनियम विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को जरूरी बनाता है जो पंचायतों द्वारा स्वयं तैयार की जाती है और पीएम गतिशक्ति जैसी राष्ट्रीय स्थानिक प्रणालियों के साथ ही एकीकृत होती है.
लेकिन थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद मनरेगा दैट नेसेसिटेटेड अ चेंज. सो नंबर वन, In 2024-25, misappropriation totaled 193.67 crore rupees across states. Only 7.61% of the households completed 100 days in the post-pandemic period. Number two, these entrenched issues such as leakages, weak verification and poor compliance required a new framework, not minor tweaks. The Act creates a clean, digitally governed, accountable and infrastructure-focused system.
और इसके अलावा ये विधेयक सेवा वितरण को पूर्वानुमानित बनाता है, दोहराव को कम करता है, संसाधनों की गुणवत्ता में भी सुधार करता है और सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतृप्ति को भी बढ़ावा देता है.
The India AI Mission under the Ministry of Electronics and Information Technology, or MeITY, has invited global submissions for a compendium on the real-world impact of AI in agriculture. The ministry in a statement said that the initiative seeks to document deployed and scalable AI solutions that enhance crop planning, strengthen farm operations, expand market access, and improve फाइनेंशियल रेजिलियंस फॉर फार्मर्स.
और इन्हों, अगर बात की जाए खेलों की, तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज लखनऊ में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. 5 मैचों की T20 श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है. 5वां और आखिरी मैच शुक्रवार को अहमदाबाद में होगा. ऑलराउंडर अक्षर पटेल अस्वस्थता के कारण इस श्रृंखला से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह शहबाज अहमद को टीम में लिया गया है.
एंड जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल सेट टू होस्ट इट्स फर्स्ट एवर इंटरनेशनल इंडियन स्टाइल रेसलिंग और दंगल एंड रुस्तमे जम्मू कश्मीर टाइटल 2025 एट द आइकॉनिक मौलाना आजाद स्टेडियम इन जम्मू टुडे.
और श्रोताओं, हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और रुक कर लेते हैं महानगरों की खबरों का. तो सबसे पहले रेनू, क्या है आपके पास चेन्नई में?
यस, द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन इज टेकिंग सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू ईज ट्रैफिक कंजेशन इन अन्नानगर बाय रोलिंग आउट अ डेडिकेटेड नेबरहुड पार्किंग प्रोजेक्ट. द इनिशिएटिव विल सी 2100 मार्क पार्किंग बेस डेवलप्ड अलोंग अ 26.43 किलोमीटर रोड नेटवर्क कवरिंग बोथ प्राइमरी एवेन्यूज एंड सेकेंडरी रोड्स. दिस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एम्स टू प्रोवाइड रेजिडेंट्स and visitors a structured parking solution and reduce roadside chaos that has long plagued the area. Aur ek aur news hai Chennai se Farhad. The special intensive revision of electoral rolls is being conducted across the state of Tamil Nadu and the publication of draft electoral roll will be on the 19th of this month. A provision to access the details of those included in the death, untraceable, absent, permanently shifted, already enrolled and other lists will be made available in the website of respected district election officers. The public can access and verify the details in the absentee, shifted, dead or AST list. मूविंग ऑन टू फरहत, क्या बताएंगे आप हमारे को दिल्ली से?
जी बिल्कुल रेनू, दिल्ली में सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं शोध से जुड़ी खबर से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक ऐसे उपकरण को तैयार किया है जिससे इंसान के आंतों में मौजूद सूक्ष्म जीवाणुओं या गट माइक्रोबायोम के बारे में बिना सर्जरी के पता लगाया जा सकता है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इस अनुसंधान के प्रमुख अन्वेषक प्रोफेसर सर्वेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस उपकरण को निगलने के बाद ये सीधा छोटी आंत में जाकर बैक्टीरिया के नमूने एकत्रित करता है। उन्होंने बताया कि सभी बैक्टीरिया नुकसानदायक नहीं होते हैं और इंसान के शरीर की लगभग आधी कोशिकाएं सूक्ष्म जीव होती हैं।
Moving on to Bengaluru Metro, aiming to reduce the burden on landfills and put plastic waste to better use, the Bengaluru Solid Waste Management Limited has started approaching cement factories in and around Karnataka. Low-value plastic can be used to produce electricity. There is demand for it in cement factories where low-value plastic is burnt at high temperatures in cement kilns. As a first step, Bengaluru Solid Waste Management Limited dispatched 160 tons of LVP to Dalmia Cement. The agreement is to send 250 tons every day. However, they are ready to take up 1,000 tons every day. चलते हैं आपके पास मुंबई की खबरों के लिए।
जी रेनू, भारत डाक इस महीने की 18 तारीख को IIT बॉम्बे परिसर में मुंबई का पहला जेन जी थीम वाला डाकघर शुरू करेगा। इस पहल का उद्देश्य छात्रों और डिजिटल रूप से सक्रिय युवाओं को तकनीक आधारित और युवा केंद्रित डाक अनुभव प्रदान करना है। वहीं नांदेड़ में आयोजित 27वीं महाराष्ट्र राज्य अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में मुंबई विश्वविद्यालय ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। विश्वविद्यालय ने विभिन्न खेलों में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 320 हासिल किए।
और हैदराबाद मेट्रो, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल बी अराइविंग एट द राष्ट्रपति निलयम बोलाराम इन सिकंदराबाद लेटर दिस आफ्टरनून फॉर द एनुअल सदन सोजर्न टिल 22nd ऑफ दिस मंथ। द प्रेसिडेंट विल बी इनॉग्रेटिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर चेयरपर्सन्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द स्टेट ऑन 19th ऑफ दिस मंथ and attend a conference on Timeless Wisdom of Bharat, Pathways of Peace and Progress, organized by Brahmakumaris at Gachibowli on the 20th of this month.
और अब पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में विजय दिवस कल गर्व के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्ग में आयोजित किया गया। राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस, मिजोरम के राज्यपाल सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह, पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जनरल RC तिवारी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने विजय दुर्ग परिसर स्थित विजय स्मारक पर 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश से 20 सदस्य प्रतिनिधिमंडल कोलकाता पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में 8 मुक्ति योद्धा और 2 सेवारत अधिकारी परिवार सहित शामिल थे। और अब आज सवेरे में वक्त है मौसम का हाल जानने का। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज सुबह से ही हल्का कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा और कोलकाता में सुबह हल्का कोहरा और बाद में आसमान साफ रहने का अनुमान है।
मूविंग ऑन टू चेन्नई, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 23 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्रीज। Bengaluru is expected to have mist. The minimum temperature was 15 degrees Celsius and the maximum will be around 26 degrees. And Hyderabad is expected to have mainly clear sky. The temperature will hover between a minimum of 14 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius.
और अब इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं रेनू। सन 1903 की बात करते हैं। राइट बंधुओं ने द फ्लायर नामक विमान पहली बार आज के दिन उड़ाया था। 12 सेकंड की इस उड़ान ने दुनिया में क्रांति ला दी थी।
On 17th of December in the year 1902, a transmission from the Marconi station in Glace Bay, Nova Scotia, Canada, became the world's first radio message to cross the Atlantic from North America.
और 1928 अगर बात की जाए तो आज के दिन लाला लाजपत राय की बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने उन पर लाठी चार्ज करने वाले सैंडर्स की हत्या की थी।
In 1931, the Indian Statistical Institute, or ISI, was established by renowned scientist and statistician Prasanta Chandra Mahalanobis in West Bengal. और अगर इसी दिन की बात करें 17th of December in the year 1718, France, Britain and Austria declared war on Spain, which is called the War of the Quadruple Alliance. और आज के दिन इन द ईयर 1954 द फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड रेल रोड फ्रेट यार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन गैरी इंडियाना यूनाइटेड स्टेट्स। फरहत
जी बिल्कुल। और 1998 में अमरीकी और ब्रिटिश बम वर्षकों ने ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स के तहत इराक पर भारी बमबारी की।
जी अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर।
जी बिल्कुल, जहां पर हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। तो सबसे पहले हमने जिस कार्यक्रम की शुरुआत की थी रहीम के दोहे से, उनकी बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध कवि और मुगल सम्राट अकबर के प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे रहीम। रहीम दास न केवल अपनी कविता के लिए बल्कि अपने प्रशासन कौशल के लिए भी जाने जाते रहे। वो अकबर के दरबार के नवरत्नों या नौ रत्नों में से एक थे। ये जीवनी भारत के महानतम कवियों में से एक है। रहीम दास के जीवन और उपलब्धियों के बारे में अगर हम बात करें तो उनके जो दोहे थे वो काफी मशहूर हुए। महिला सशक्तिकरण की बात हो या समाज में समानता, इन सब पर उन्होंने व्यंग्य किया और उनके जो दोहे थे वो काफी लोकप्रिय रहे। बल्कि जो बच्चों की किताबें हैं वो रहीम के दोहे के जो बिना है वो अधूरी होती हैं। तो एक और उनका दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो रहीम ने पानी को तीन अर्थों में बयां किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता है, मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। और पानी का दूसरा अर्थ होता है आभा, तेज या चमक, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। उन्होंने तीसरा अर्थ समझाया है जल से, यानी चून से जोड़ना, आटे से जोड़ना। तो इस तरीके से उन्होंने ये समझाया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो पानी के बिना जो होता है वो अधूरा होता है।
और इतना डीप आप इंटेंस जिस पोएट के बारे में बता रहे हैं, वैसे ही हमारे पास एक और पोएट है जलाल अद्दीन मोहम्मद रूमी, मोर पॉपुलरली सिंपली नोन एज रूमी, हु वॉज अ 13th सेंचुरी पर्शियन पोएट, इस्लामिक स्कॉलर, थियोलॉजियन एंड सूफी मिस्टिक, ओरिजिनली फ्रॉम ग्रेटर खुरासन। और आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। रूमी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट पॉपुलर पोएट एंड द बेस्ट सेलिंग पोएट इन द यूनाइटेड स्टेट्स।
और पश्चिमी देशों में रूमी जो है वो काफी मशहूर हैं। और रूमी की कविताएं भारत के साथ साथ अमेरिका में भी सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। रूमी कहते थे कि किनारा नहीं इस बयाबान में, नहीं है करार इस दिलो जान में, जहां दर जहां नक्श तस्सीम है, हमारे वजूद इनमें है कौन से। रूमी ने अपनी कविता संग्रह का नाम अपने पीर शम्स तबरेज के नाम पर दीवान शम्स तबरेज रखा, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा शेर है। और उनकी दूसरी किताब आई मसनवी मौलवी मानवी, जिसे मसनवी मौलाना रूम के नाम से जाना जाता है। इनमें 27,000 से भी ज्यादा शेर रहे, लेकिन ये किताब अधूरी रह गई क्योंकि उन्होंने लिखना एक समय के बाद बंद कर दिया था। और इसके अलावा वो उनका मानना था कि हर फर्द किसी खास मकसद के लिए पैदा होता है और उस वक्त के हुसूल की एक ख्वाहिश पहले ही से उसके दिल में रख दी जाती है।
जी बिल्कुल। And today is the death anniversary of Joseph Lee or Big Joe Williams, who was an American Delta Bluesist, guitarist, singer and songwriter, notable for the distinctive sound of his nine-string guitar. When he played Farhat, everything rattled but Big Joe himself. The total effect of this incredible apparatus produced the most buzzing, sizzling African sounding music that we must have ever heard. So here, let's listen in to Throw the Boogie Woogie by Big Joe Williams.
I'm gonna throw the boogie woogie, take me all night long. Mama, 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 just look at sis. She's standing around the back of she darn that cushion. She wanna throw the boogie woogie. Wanna throw the boogie woogie. I'm gonna throw the boogie woogie, but take me the whole night long.
And today is the birth anniversary of Ludwig van Beethoven, who was a German composer and pianist, a crucial figure in the transition between the classical and romantic eras in classical music. He remains one of the most recognized and influential musicians of this period and is considered to be one of the greatest composers of all time. He displayed his musical talents at an early age and was vigorously taught by his father. Aur Farhat, aap jante hain, only a very handful of people ever born will be remembered for something good they left us behind hundreds of years after they passed on, and Beethoven will always be number one. What Farhat, ये Beethoven's fifth symphony थी जो अभी हमने सुनी और हमारे listeners ने सुनी, and I think it is number one till today. जी
बिल्कुल. और अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग और याद कर रहे हैं जाने माने प्रसिद्ध अभिनेता सुरेश ओबराय को, जिनका आज जन्मदिन है. उनका जन्म 17 दिसंबर 1946 को पंजाब में हुआ. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1970 के दशक में की. सुरेश ओबराय ने कई फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभाई, खासकर फिरंगी, कभी खुशी कभी गम और बेटा जैसी फिल्मों में उन्हें देखा गया.
जी बिल्कुल. ही इज द फादर ऑफ बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय, एंड ही स्टार्टेड हिज करियर इन रेडियो शोज, मॉडलिंग एंड लेटर मूविंग टू Bollywood, making him a popular character actor in the 80s and the 90s. But here, क्योंकि उनकी इतनी दमदार आवाज की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना एक डायलॉग सुन लेते हैं फ्रॉम द मूवी तेजाब.
जब ड्यूटी तफरी बन जाए और जुआरी वर्दी से डरने की बजाय वर्दी के साथ बैठकर जुआ खेलने लगे, तो दाव पर चंद सिक्के नहीं मुल्क की किस्मत भी लग जाती है. गुप्ता,
तुम साबित क्या करना चाहते हो गगन सिंह?
कुछ नहीं.
बहुत ही खूबसूरत ये गीत.
जी
और अब आगे बढ़ते हैं. आज है भारतीय फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम का जन्मदिन. वे फिल्मी दुनिया में आने से पहले मॉडल थे. कई विज्ञापनों और कंपनियों के लिए उन्होंने मॉडलिंग की. जॉन अब्राहम इंडियन सुपर लीग की फुटबॉल टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के सह मालिक भी रहे, और उन्हें कई बार कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया.
जी बिल्कुल. ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर अ फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर द फिल्म बाबुल, और बहुत ही सारी मूवीज में उन्होंने कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म्स लाइक गरम मसाला, टैक्सी नंबर 92 और 9211 बोलते हैं जिसे, या दोस्ताना, न्यूयॉर्क फोर्स, हाउसफुल 2, बहुत ही सारी मूवीज में उन्होंने काम किया है. लेकिन बहुत गाने भी उनके ऊपर जो फिल्माए गए हैं फरहत, बहुत ही प्यारे गाने थे. तो क्यों ना हम जॉन अब्राहम का ये वाला गाना सुन लेते हैं.
दम हर पल बेचैनी है, कौन बला है सीने.
And today is the birth anniversary of Sir Humphrey Davy, the first baronet, who was a Cornish chemist and inventor, who is best remembered today for isolating using electricity a series of elements for the first time. And Farhat, aapko pata hai jab operation hota hai to hame ek gas sunghai jati hai, wo kisne, inhone hi invite kari thi. In 1799 he experimented with nitrous oxide and was astonished at how it made him laugh, so he nicknamed it laughing gas and wrote about its potential anesthetic properties in relieving pain during surgery. He also invented the Davy lamp and is a very early form of arc lamp. Aur ye bahut hi acha mazak bhi karte the. He joked that his assistant Michael Faraday was his greatest discovery. Ji Farhat.
जी और अब हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा और रंगमंच के दिग्गज कलाकार श्री राम लागू को. इन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी फिल्मों में भी काम किया. श्री राम लागू ने अपने फिल्मी करियर में 100 से ज्यादा हिंदी और 40 से ज्यादा मराठी फिल्मों में काम किया, और मराठी थिएटर में तो इन्हें 20वीं सदी के सबसे बेहतरीन कलाकारों में गिना जाता है. और तो क्यों ना हम लोग फिल्म सौतन का जो है वो एक डायलॉग और गीत सुन लेते हैं, जिसमें उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी के पिता का किरदार निभाया था जो काफी सराहा गया था. आइए सुनते हैं.
जी
मैं नौकरी ढूंढने निकला था ना, तो एक अखबार में एक फिशिंग कंपनी का एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, एक अकाउंटेंट चाहिए. तो मैं सीधा कंपनी के मालिक श्याम बाबू के पास चला गया.
क्या?
हाँ.
उनका नाम श्याम बाबू है?
हाँ, तो पहले खाना तो खा ले। पहले तो उन्होंने कह दिया कि कल आ जाइए,
फिर क्या हुआ बाबा?
फिर मैं अपने आप को रोक नहीं सका, मैंने उनको बता दिया कि मैं हरिजन हूँ, फिर भी कहने लगे कल आइए। तब हार मानकर मैंने उन्हें कह दिया कि मेरी एक बेटी है, उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, अगर आज भी काम न मिला तो सांस लेने की भी ताकत नहीं रहेगी। बस उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मुझे नौकरी दे दी।
इसके साथ ही अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो रेनू और फरहत को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त कर।